सूरह लुकमान मक्का के उस दौर की सूरत है जब इस्लाम की दावत को दबाने के लिए और मिटाने के लिए जुल्म और सितम शुरू हो चुका था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान की नसीहतों का जिक्र किया है जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। और हजरत लुकमान कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत लुकमान न नबी थे न बादशाह, बल्कि आजाद करदा हबशी गुलाम थे। और खालिद रबई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके आका ने एक दफा उन्हें कहा कि बकरी जिबा करो और इसकी दो बेहतरीन बोटियां ले आओ। वो जुबान और दिल निकाल कर ले गए। फिर चंद दिन बाद आका ने फिर यही हुक्म दिया और कहा दो बदतरीन बोटियां ले आओ, तो वो फिर भी जुबान और दिल निकाल कर ले गए। आका ने वजाहत तलब की तो फरमाने लगे ये दोनों अज़ा अगर पाकीज़ा हो तो सबसे बेहतरीन होते हैं और अगर नापाक हो तो बदतरीन होते हैं। अल्लाह हमारे दिल और हमारी जुबान को पाकीज़ा बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयात है। ये हिकमत के मोती हैं, ये कीमती बातें हैं। और कीमती चीजों का किसको पता चलता है? जो उसकी कीमत को, जो उसकी हैसियत को पहचान सके। तो ये किताब हकीम की आयात है। दिल में ईमान हो तो इसकी कदर होती है, और अगर दिल में ईमान ना हो तो हिकमत भरी बातें सुनने पर भी इंसान आमादा नहीं होता। हुदा व रहमत लिल मुहसिनीन, हदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए। यहाँ गोया नेकोकार कह के अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये लोग उन सारी बुराइयों से रुकने वाले होते हैं जिनसे ये किताब रोकती है, और उन सारे नेक कामों पर अमल करने वाले होते हैं जिनका ये किताब हुक्म देती है। जो नमाज कायम करते हैं, जकात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। अब इस आयत में किस चीज के बारे में आया है? लहवल हदीस। लहवल हदीस ऐसी बात को कहते हैं जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके उसे अहम तर चीजों से गाफिल कर दे, और इसका इतलाक बुरी और फजूल और बेहुदा बातों पर होता है। आप भी लिस्ट बनाइए कौन कौन सी चीजें हैं जो लहवल हदीस हैं। गपशप, हंसी मजाक, ड्रामे, दास्ताने, अफसाने, नॉवल, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, मौसीकी, हर वो चीज जिसमें इंसान को नमाज याद ना रहे, जिसमें मशगूल होके अल्लाह का हुक्म याद ना रहे। माँ बाप बुला रहे हैं, परवाह नहीं, अपने करीब बैठे हुए लोगों का पता नहीं। दुआ करें अल्लाह हमें कलामे दिल फरेब से बेनियाज कर दे। और ये कलामे दिल फरेब, इसके बारे में आता है कि नजर बिन हारिस जो एक मक्का का काफिर था, उसका मामला अबू लहब और अबू जहल से मुख्तलिफ था। उसका तरीका कार इस्लाम की मुखालफत का मुख्तलिफ था। उसने कहा मैं इस दावत का इलाज करता हूँ। वो मक्का से इराक गया, वहां से शाहाने अजम के किस्से और रुस्तम और अस्फंजार की दास्ताने लेकर आया, और उसने किस्सा गोई की महफिलें बर्पा करनी शुरू कर दी ताकि लोगों की तवज्जो कुरान से हट जाए और वो इन कहानियों में खो जाएं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये भी फरमाते हैं कि नजर ने इस मकसद के लिए गाने वाली लोंडियां भी खरीदी थी। जिस किसी के मुतालिक वो सुनता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर हो रहा है, उस पर अपनी एक लोंडी मुसल्लत कर देता और उससे कहता कि इसे खूब खिला पिला और गाने सुना ताकि तेरे साथ मशगूल होके इसका दिल उधर से हट जाए। और क्या आज भी यही चाल नहीं है? आज भी उम्मत के जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को कुरान से दूर करने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, अपने संजीदा कामों से दूर करने के लिए यही लघवियात, यही फजूल चीजें अपने अंदर इस तरह मशगूल कर लेती हैं कि इंसान अहम चीजों से गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अपने मकसद जिंदगी से गाफिल हो जाता है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा गया कि लहवल हदीस से क्या मुराद है? उन्होंने 3 मरतबा जोर देकर फरमाया खुदा की कसम इससे मुराद गाना है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि गाना बजाना दिल में यूं निफाक पैदा करता है जैसे पानी से घास और सब्जा उगाता है। और सैयदना अबू उमामा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बाजों गाजों साज और मजराब बुतों और सलीबों और अमरे जाहिलियत को खत्म करूं। प्यारे नबी ये मौसीकी को गोया खत्म करने आए थे। बाजे गाजों को खत्म करने आए थे, और उनकी उम्मत और उनसे मोहब्बत का दावा करने वाली उम्मत उसके अंदर मशगूल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जना को, रेशम को, शराब को और आलाते मौसीकी और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे, यानी इन चीजों के दूसरे नाम रख के उन्हें जायज बना लेंगे। और हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गाने वाली लोंडी की मजलिस में बैठ कर उसका गाना सुने, क्यामत के रोज उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। और आज तो किसी मजलिस में जाने की जरूरत ही नहीं, हर घर में लोंडियां मौजूद हैं गाने वालियां, इस टीवी और इंटरनेट और मीडिया की शक्ल में। अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, दो आवाजें दुनिया और आखरत में मलून है, खुशी के मौके पे गाना बजाना और मुसीबत के मौके पे जजा फजा करना, ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती है तो वो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि इसने सुना ही नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। अच्छा मुझे सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब का। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे, यानी गोया पूरी पूरी जन्नतें उनके हवाले कर दी जाएंगी ताकि खूब मजे करें और फायदा उठाएं। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर दे, ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त और हकीम है। उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुम्हें नजर आए, उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाए, उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तखलीक। अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। वलकद आतैना लुकमान अलहिकमता अनिशकुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो। ऐसे लगता है जैसे कुरान की तालीमात का निचोड़ ही यही है, शिर्क ना करो शुक्र करो, शिर्क ना करो शुक्र करो। और शुक्र इंसान में कब पैदा होता है? जब वो दुनिया के हवाले से अपने से कमतर को देखता है तो उसमें शुक्र का जज्बा पैदा होता है, और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है, ये मालिक को खुश करने वाली चीज है। एक तफसीर में आता है कि शुक्र की बुनियाद पांच चीजों पर है। ये कौन सी पांच चीजें हैं? शुक्र करने वाले का उसके सामने आजिज होना जिसका वो शुक्र अदा कर रहा है, यानी पहली चीज आजिजी, फिर उसके साथ मोहब्बत करना, उसकी नेमत का एतराफ करना, उस पर उसकी तारीफ करना, और ये कि उस नेमत को उस जगह इस्तेमाल ना करे जहां नेमत देने वाला पसंद ना करता हो। ये पांचों बातें ही शुक्र की बुनियाद है। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो शुक्र की बुनियादों में से एक बुनियाद कम हो जाएगी। अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बना दे। हजरत मुआविया बताते हैं, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए तो देखा कुछ लोग हल्का बनाए हुए बैठे हैं। आपने पूछा, क्यों बैठे हो और क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम यहाँ बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं और उसके एहसानात को जो उसने हम पर किए हैं हम उन्हें याद कर रहे हैं, और हम उसके इस एहसान को याद कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे पास अपना दीन भेजा, हमें ईमान की तौफीक बख्शी और हमें सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाह हमें भी इस दीन की नेमत का शुक्र करने वाला बना दे, इस ईमान पर अल्लाह के शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। और जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, यानी अल्लाह बंदों के शुक्र का मोहताज नहीं है, बंदों को शुक्र की जरूरत है। वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आप से आप महमूद है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान की नसीहतों का जिक्र किया है जो वो अपने बेटे को कर रहे हैं, गोया इस बात का इजहार है कि आदमी दुनिया में सबसे बढ़कर अगर किसी के हक में मुखलिस हो सकता है तो वो उसकी अपनी औलाद ही है। एक आदमी दूसरों को धोखा दे सकता है, दूसरों से मुनाफकाना बातें कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद को एक बुरे से बुरा आदमी भी फरेब देने की कोशिश नहीं करता। और इसलिए लुकमान का अपने बेटे को ये नसीहत करना दरअसल इस बात का इजहार है कि शिर्क वाकई एक बदतरीन फेल है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि कुफारे मक्का में उस वक्त बहुत से माँ बाप अपने औलाद को दीन पर चलने से रोक रहे थे, शिर्क पर कायम रखने के लिए जोर लगा रहे थे, और उनको बताया जा रहा है, बेवकूफो तुम्हारी सरजमीन के तो मशहूर हकीम ने अपनी औलाद की खैरख्वाही का हक यूं अदा किया कि اس کو سمجھایا کہ شرک سے پرہیز کرو اور تم اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو، یہ تمہاری اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے یا بدخواہی؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اولاد کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، ان کی فرمائشیں پوری کرے، بلکہ یہ بھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کا عقیدہ درست کرے، ان کی رہنمائی کرے. اور شرک کے حوالے سے پیارے نبی فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، اور میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا. تو دعا بھی کیجئے اور کوششیں بھی کیجئے، اور جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے عقیدے میں، عمل میں، کسی چیز میں کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جو شرک سے ملتی جلتی ہو، جو اس سے قریب کرنے والی ہو. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک سے بچا لے. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کرتے ہیں، اور والدین میں سے بھی ماں کا، جس نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر جنم دیا اور اس کو پالنے میں اس کی اتنی محنتیں اور عرق ریزی شامل ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، من ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، امک ثم ابا کا، اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، ثم الاقرب فالاقرب، پھر اپنے سب سے قریبی کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریبی ہے اس کے ساتھ. اور حدیث میں ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے آگے جھکیں گے تو جنت ملے گی، اور ماں باپ کے نافرمان کی سزا تو اللہ دنیا میں ہی ان کو دے دیتے ہیں. اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ان آیات کے پیچھے واقعہ ہے، حضرت سعد بن وقاص کی والدہ نے ان کے اسلام قبول کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، تم اسلام سے پھر جاؤ ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور تم کو عرب کا آر لگ جائے گا، یعنی لوگ تم پر باتیں کریں گے اور لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا. حضرت سعد نے جواب دیا، جان لو، خدا کی قسم، اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں، میں تب بھی اسلام سے نہیں پھروں گا. اور حضرت سعد بن وقاص اپنی والدہ کے بہت خدمت گزار تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، والدین کی خدمت، بڑوں کی خدمت، احترام اپنی جگہ، لیکن اطاعت اللہ کی. اور یہاں اس واقعے میں ہم یہ دیکھیں کہ وہ خاتون اپنی اولاد کے لیے کس حد تک گزر گئی کہ وہ انہیں اپنے عقیدے پہ جمانا چاہتی ہے. آج امت کی مائیں کس کے لیے روتی ہیں، کس لیے بولتی ہیں، کیا منواتی ہیں اپنی اولاد سے؟ اگر آج عورت کا رونا اور اس کا بولنا اور اس کا منوانا اس امت کے خیر کے لیے ہو جائے، دین کے لیے ہو جائے، تو امت کی تقدیر بدل جائے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا، بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اسے اللہ نکال لائے گا. جب اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی پہاڑوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اللہ اسے نکال سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے میرے دل کی حالت اس سے مخفی ہو؟ کوئی نیکی، کوئی برائی جو میں نے تنہائی میں کی ہو، اللہ سے چھپی بھی ہو، اللہ کے سامنے ایک ایک حرکت کھلی کتاب کی طرح درج ہے. وہ باریک بھی ہے اور باخبر. بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر. گویا یہ بھی کام کرنے کا ہے، یہ کام اولادوں کو سکھانے کا کام ہے کہ کسی برائی کو برداشت نہ کریں اور نیکی پر ان کی زبان خاموش نہ رہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اگر وہ پرہیز نہ کرے، تو بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر اسی وقت اس کا علاج نہ کیا جائے، اسے سمجھایا نہ جائے، उसकी इस्लाह ना की जाए तो ये गुनाह उस वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलता है और उस वायरस से भी ज्यादा तबाही फैलाता है। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, न जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज जरा पस्त रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। इनमें और क्या चीजें अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि लोगों से कुशादा पेशानी के साथ मिलना, उनकी तरफ रुख करके बात करना, मुंह फेर कर बात नहीं करना, ये तकब्बुर की अलामत है। प्यारे नबी फरमाते हैं, किसी मुसलमान भाई से तू कुशादा पेशानी से हंस मुख होकर मिले, ये तेरी बड़ी नेकी है। और तहबंद और पजामे को टखने से नीचा ना करके ये तकब्बुर और गुरूर है, और तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को नापसंद है। प्यारे नबी फरमाते हैं, इंसान अपने गरूर और खुद पसंदी में बढ़ते बढ़ते अल्लाह के हाँ जब्बारों में लिख दिया जाता है, फिर सरकशों के अजाब में फंस जाता है। ये मसनद अहमद की रिवायत है। और यहाँ आवाज का भी जिक्र है, गधे की आवाज किस कदर बुरी आवाज। अल्लाह ताला ने उससे मुशाबे करके बताया कि अपनी आवाज को उस तरह ना करो, अपनी आवाज में नरमी रखो, पस्त रखो, चीख कर बोलना, मुंह फाड़ कर बोलना, गला फाड़ कर बोलना ये मुनासिब नहीं, ये अशरफुल मखलूकात का बोलना नहीं, ये तो जानवरों का बोलना है। जिमनन आपको एक हदीस सुनाती हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब तुम मुर्गों के चीखने की आवाज सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि उन्होंने कोई फरिश्ता देखा है। जब तुम गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान देखा है। और ये मिसाल देने का मतलब भी ये है कि तुम गधे की मुशाबियत अख्तियार ना करो, वो तो शैतान को देखकर ऐसी आवाज निकालता है, तुम उस जैसे ना बनो। क्या तुम लोग देखते नहीं कि अल्लाह ने जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल ये है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि इनके पास कोई इल्म हो या हदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब। और जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं कि हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे, ख्वाह शैतान उनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता रहा हो। जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, कह दीजिए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। फकद इस्तमसका बिल-उरवतिल वुस्का, उसने फिल वाक़े एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया। और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में है। अब जो कुफर करता है उसका कुफर तुम्हें गम में मुब्तला ना करे, उन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। हम थोड़ी मुद्दत इन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं, फिर इनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज और आप से आप महमूद है। जमीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो सब के सब कलम बन जाएं और समुंदर दवात बन जाए जिसे साथ मजीद समुंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म ना होंगी। बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना फिर दोबारा जिला उठाना, तो उसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफ्फिस को पैदा करना और जिला उठाना। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, सब एक वक्ते मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है। और इसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्गो बरतर है। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समुन्दर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। जैसे नमाज और जकात का जिक्र इकट्ठे आता है, इसी तरह कुरान में सब्र और शुक्र का जिक्र इकट्ठे आता है। गोया दोनों में चोली दामन का साथ है। सब्र करने वाला ही शुक्र करता है और शुक्र करने वाला ही सब्र। और जब समुंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचा कर इन्हें खुश्की तक पहुंचा देता है तो इनमें से कोई दरमियानी राह इख्तियार करता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुकरा है। लोगों बचो अपने रब के गजब से, डरो उस दिन से जब कोई बाप अपने बेटे की तरफ बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिर वाकई अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना धोखाबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। अल्लाह अकबर, ये दुनिया की जिंदगी और ये शैतान की चालें, अल्लाह हमें इन दोनों से बचा ले। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता और रब की मोहब्बत से दुनिया भी मिल जाती है और जन्नत भी। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और ना किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसे मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है और वाकई हम में से कोई नहीं कह सकता कि वो कब मरेगा, कहाँ मरेगा। क्या पता कि हम खुद पैसे खर्च करके टिकट लेकर उस जगह पे रवाना हो रहे हो जहाँ हमारी मौत लिखी हो। हजरत सुलेमान के बारे में आता है कि उनके दौर में एक शख्स उनके पास आकर बैठा और दूसरा शख्स मुस्तकिल उसे घूरी जा रहा था। इतना घूरा कि उस शख्स को खौफ आ गया। हजरत सुलेमान से कहने लगा, मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए। उनके पास हवाएं भी थी और तख्त भी था, दूर हवाओं के जरिए इनको थोड़ी देर में पहुंचा दिया। कुछ अरसे बाद फिर वही शख्स दोबारा नजर आया जो घूर रहा था। हजरत सुलेमान ने पूछा, तू कौन है और उस फलां शख्स को क्यों घूर रहा था? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, उस दिन वो शख्स आपके पास बैठा हुआ था और मैं इसलिए घूर रहा था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि उसकी जान कहीं दूर निकालनी है और मैं ये सोच रहा था कि ये वहां कैसे पहुंचेगा, ये तो यहाँ बैठा हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने दीन के रास्ते में ईमान की हालत में शहादत की मौत अता फरमाए। सूरह सजदा मक्का के दरमियानी दौर की सूरतों में से है और इस सूरत की अहमियत का हमें इस बात से पता चलता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। सूरह सजदा भी 30 आयतों पर मुश्तमिल है और सूरह मुल्क भी 30 आयतों पर मुश्तमिल है। और ना सिर्फ ये कि आप रात को पढ़ा करते थे बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल था कि जुम्मे के रोज फजर की पहली रकत में इस सूरत की तिलावत किया करते थे। देखते हैं कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें क्या इरशाद फरमाया है, वो कौन सी अहम बातें हैं जिनको रोजाना रात को दोहराना और हफ्ते में एक मरतबा दोहराना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिला शुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। बिल्कुल आगाज में ही गोया ऐलान कर दिया कि इसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। ये दुनिया के किसी आम इंसान का फरमान नहीं है जो तुम एक कान में डालो और दूसरे कान से निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का, पूरी कायनात के खालिक और मालिक और पल पल पालने वाले का कलाम है। इसे इग्नोर कर दिया तो कहीं से राह रास नहीं पाओगे। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से ताकि तू मुतनब्बे करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हदायत पा जाए। अल्लाह को कितनी चाहत है कि मैं और आप हदायत पा जाए। अल्लाह करे कि हमें भी अपनी हदायत की फिक्र लग जाए, तलब लग जाए, तड़प लग जाए और ना सिर्फ अपनी हदायत की बल्कि औरों की हदायत की भी तड़प लग जाए। अल्लाहु अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। वो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और उसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1,000 साल है। यानी हमारे नजदीक जो 1,000 साल है वो गोया अल्लाह के यहाँ एक दिन का काम है और अल्लाह ताला 1,000 साल की स्कीम गोया फरिश्तों के हवाले कर देते हैं और हमारे अमाल भी ऊपर जाते हैं। پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو ابن آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہو، اور سوائے دو باہم عداوت رکھے ہوئے بھائی کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ صلح کر لیں. ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی. کیا آپ بھی گواہی دیں گے کہ واقعی اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی؟ بلا شبہ. تو ہمارا رب بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی جو کام کریں احسن کے درجے پہ کریں، بہترین کرنے کی کوشش کریں، کوانٹیٹی کے چکر میں نہ پڑیں، کوالٹی کے لیے محنت کریں. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. کتنی بڑی بڑی نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں. پیارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت. اللہ ہماری سماعت کو، ہماری بصارت کو اور ہمارے بدن کو عافیت میں رکھ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. اللہ نے تو یہ دنیا بنائی تھی حق دیکھنے کے لیے اور حق کو سننے کے لیے. دنیا میں جب نہیں دیکھا نہیں سنا، وہاں پر جائیں گے تو کہیں گے پروردگار ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا. اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. یعنی اگر حقیقت کو دکھا کر ہی لوگوں کو ہدایت دینا مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں اتنے بڑے امتحان سے کیوں گزارتے؟ جنت سامنے آ جائے، دوزخ سامنے آ جائے، پروردگار خود اپنے فرشتوں کے ساتھ سامنے آ جائے تو کس کی مجال ہے وہ انکار کرے؟ اور کیا پولیس کو دیکھ کر کوئی اپنے جرم سے معافی مانگے تو کیا پولیس اسے چھوڑ دیتی ہے؟ یہ تو دنیا کا قانون نہیں چھوڑتا، اللہ سے کیسے توقع کرتے ہیں؟ مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اور اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ اس دن بھول جائیں گے. آج بھی ہم دیکھیں میرے اور آپ کے ارادے اس دنیا کے ہی ہیں، خواہشیں ساری اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. جو منصوبے بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، جو ہمیں غم ہیں، حسرتیں ہیں، سب اسی دنیا سے متعلق ہیں. اور تو اور ہماری دعائیں بھی ساری اسی دنیا سے متعلق ہیں. اس دن کی ملاقات کو کیوں بھول گئے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یہ آیت سجدہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیتیں سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے گر پڑتے ہیں، ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اکڑ ختم کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے کیا مراد ہے؟ وہ راتوں کو کھیل تماشوں، تفریحات اور نہیں تو ڈرامے دیکھنے میں راتیں نہیں گزارتے، بلکہ ان کا کیا حال ہوتا ہے جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. और उसके खौफ से कांपते हैं, उसी से सारी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। अल्लाह करे कि हम रात को परवरदिगार तेरे लिए जागने वाले बन जाएं। अल्लाह तू अपने से इतनी मोहब्बत दे दे कि नींद कुर्बान करके तेरे हजूर खड़े हो सके। सैयदना सिला एक ताबई है, बहुत इबादत गुजार और दुनिया की चीजों से बेनियाज, उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने चचाजात से शादी की, और शादी के दिन ऐसा हुआ कि भतीजा शाम ढलते ही उनके पास आया और नहलाने के लिए गर्म हमाम में ले गया, और फिर एक खुशबूदार और आरास्ता पे रास्ता कमरे में छोड़ गया जिसमें दुल्हन सिंगार किए हुए बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर शुक्राने के दो नफल अदा करने लगे। दुल्हन ने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दोनों पर नमाज की लज्जत ने ऐसा जादू किया कि पूरी रात नमाज में गुजार दी। जरा दिन चढ़े, भाई का बेटा इनके पास आया। जब उसे पता चला कि आपने पूरी रात इबादत में गुजार दी, तो कहने लगा, चचा जान, नई नवेली दुल्हन आपके घर आई और आप रात भर नमाज पढ़ते रहे। फरमाने लगे, भतीजे, कल तुम मुझे पहले एक ऐसे कमरे में लेकर गए जिसने मुझे जहन्नुम की याद दिला दी, फिर एक दूसरे कमरे में ले गए जिसने मुझे जन्नत की याद दिला दी। बस मैं सारी रात इसी जन्नत और दोजख के चक्कर में गलता हूँ, परेशान रहा, यहाँ तक के सुबह हो गई। सोचे तो सही उनकी फिक्रें, खुदा करे कि इसका अशरे अशीर भी हमें हासिल हो जाए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। एक रिवायत में आता है कि जब इंसान सदका करता है तो वो 70 जबड़े शैतान के तोड़ कर सदका करता है। गोया शैतान कितनी कोशिश करता है कि इंसान अपना माल अल्लाह के रस्ते में लगाने ना पाए। فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की जजा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, इसकी किसी मुतनफ्फिस को खबर नहीं। छुप कर किए गए अमाल का बदला अल्लाह ने भी छुपा कर रखा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ फराहम किया है जिसे न कभी किसी आंख ने देखा, न कभी किसी कान ने सुना, और ना कोई इंसान कभी इसका तसव्वुर कर सका। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी के आमाल या तो दिल से ताल्लुक रखते हैं, या आंख से, या कान से, और ये अल्लाह का फजल है कि आंखों के आमाल के बदले में वो नेमतें जो किसी आंख ने नहीं देखी, और कान से सुनाई देने वाले आमाल के बदले में जो किसी कान ने नहीं सुने, और दिल के ईमान और हुस्न एतकाद के बदले में वो नेमतें देगा जिनका ख्याल तक किसी बशर के दिल में नहीं आया होगा। अल्लाह हमें भी ऐसी ही जन्नतों का मुस्तहिक बना दे। भला कहीं यह हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो और वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए तो जन्नतों की क्यामगाहें हैं जियाफत के तौर पर उनके आमाल के बदले में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में ऐसे महल हैं जिनके अंदर खड़े हो तो बाहर की हर चीज नजर आती है, और बाहर खड़े हो तो अंदर की हर चीज नजर आती है। एक अराबी ने खड़े होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये किस आदमी के लिए हैं? आपने फरमाया, उसके लिए जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, बकसरत रोजे रखे, और जब लोग मजे की नींद सो रहे हों उठकर अल्लाह के लिए नमाज पढ़े। अल्लाह हमें ये काम करने की तौफीक दे दे। और जिन्होंने फिस्क इख्तियार किया है उनका ठिकाना दोजख है, जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे उसी में धकेल दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा, चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुटलाया करते थे। यहाँ दोजख से निकलने का जिक्र है कि वो निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर धकेल दिए जाएंगे, और जाहिर है जहन्नुम से निकलने की तो कोई सूरत ही नहीं, वो आग से निकलने का इरादा कैसे कर सकेंगे? इसका अंदाजा सुमरा बिन जुंदुब से मरवी एक लंबी हदीस से होता है जिसमें प्यारे नबी ने कई चीजों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में दिखाई। इनमें से एक चीज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हम एक सुराख की तरफ चले जो तनूर की तरह था, इसका ऊपर का हिस्सा तंग और नीचे का खुला था, इसके नीचे से आग भड़क रही थी, जब वो ऊपर करीब आती तो वो लोग ऊपर उठाते, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते, जब वो मांद पड़ती तो वापस इसी में लौट जाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने कहा, ये कौन है? तो दोनों फरिश्तों ने कहा कि आगे चलो, और फिर वो सारे मुशाहिदात के बाद इन फरिश्तों ने बताया कि तुमने उस सुराख में जो कुछ देखा वो जानी लोग थे। और ये भी ख्याल रहे कि एक ही हाल में रहने में तकलीफ की वो शिद्दत नहीं होती जो बार बार उसके दोहराने से होती है। अल्लाह ताला हमें आग के अजाब से बचा ले। उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें चढ़ाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बागियाना रविश से बाज आ जाएं। इस आयत को भी आजकल के तनाजुर में रख कर फिर से पढ़िए, वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अल अदना दून अल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह उस बड़े अजाब से पहले लोगों को क्यों छोटे छोटे अजाबों में मुब्तला करता है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लौट आए, अल्लाह की तरफ पलट आए। और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जिसे इसके रब की आयात के जरिए से नसीहत की जाए और फिर वो इससे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक ना होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हदायत बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयात पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। यकीनन तेरा रब ही कयामत के रोज उन बातों का फैसला करेगा जिनमें बनी इसराइल बाहम इख्तलाफ करते रहे हैं। और क्या इन लोगों को इन तारीखी वाकयात में कोई हदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं? इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं? और क्या इन लोगों ने ये मंजर कभी नहीं देखा कि हम एक बेआबो गया जमीन की तरफ पानी बहा लाते हैं और फिर इसी जमीन से वो फसल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये खुद भी खाते हैं? तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता? ये लोग कहते हैं ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो, इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नाफे ना होगा जिन्होंने कुफर किया, और फिर इनको कोई मोहलत ना मिलेगी। अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतजार करो, ये भी मुंतजर हैं।